समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन और अनीता स्टूडियो में मौजूद हैं और अगले आधे घंटे तक हम आपको देश की सैर करेंगे। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से, और बात करेंगे अपने संवाददाताओं की जो पूरे देश में फैले और खबर देंगे कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ उनके इलाकों में, उनके क्षेत्र में, और ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी घटनाएं हैं जिन पे आज हम विशेष नजर रखेंगे। तो अगले आधे घंटे आपको थोड़ा हमारे साथ जुड़ जाना है। कार में बैठे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दीजिएगा, घर बैठे हैं तो रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दीजिएगा, लेकिन हमें जरूर सुनते रहिएगा। क्यों अनिता
जी? बिल्कुल। सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM, एंड दिस इज अनिता एंड नवीन ब्रिंगिंग परिक्रमा प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू दिस टाइम अराउंड। एंड फॉर यू वी हैव सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, capsules, tributes and much more. All this over the next 30 minutes and we begin with the news headlines first, Naveen.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी जारी कर दी है।
एनडीए गवर्नमेंट लाइकली टू होल्ड इट्स फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग दिस इवनिंग इन न्यू दिल्ली।
निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की है।
एंड इन जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेज लॉन्च मैसिव सर्च ऑपरेशन इन रियासी टेरर अटैक, एलजी अनाउंसेस 10 लाख रूपीज एक्स ग्रेशिया ईच फॉर फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स।
वहीं मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
And now, time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we look and talk about PM Kisan Samman Nidhi Yojana.
वाकई अनिता, आज हमारे देश के किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की और एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय के साथ की। उन्होंने कहा है कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है और ये जून के महीने में जारी की गई है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारा देश, हम सब जानते हैं कि कृषि आधारित देश है, कृषि प्रधान देश है, तो अगर देश के किसानों को लगातार बढ़ावा मिलता रहेगा तो देश उन्नति की राह पे अग्रसर होता रहेगा, और शायद यही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
जी, लाइक वन ऑफ द हेडलाइंस सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे सैंक्शन द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान निधि स्कीम। द इंस्टॉलमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 9.3 करोड़ फार्मर्स एंड इंटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 20,000 करोड़ रूपीज। Launched in 2019, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme offers eligible farmers an annual financial assistance of 6,000 rupees. This amount is distributed in 3 equal installments of 2,000 rupees every 4 months, directly deposited into the beneficiaries' bank accounts. The scheme was launched in the February month of 2019, but was made effective from December 2018.
और अनिता, सरकार का ये फैसला देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद 17वीं किस्त जारी की है, और अगर अंकों की बात करें तो करीब 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। ये 9.3 करोड़ किसान हैं जिनको फायदा होगा, और इससे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किस्त थी, जो उसके जो पैसे थे वो उनके बैंक के खातों में भेजे गए थे। सरकार की बात करें तो किसानों को सालाना 6,000 रूपये की आर्थिक मदद होती है। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। और जैसा कि हमने कहा कि 6,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है, और ये मदद जो है किसानों को बहुत फायदा करती है। फायदा करती है बीज खरीदने में, फायदा करती है किसान खरीदने में, और विशेषकर बात करें तो उन छोटे किसानों को बहुत फायदेमंद है ये किसान सम्मान निधि योजना जो कर्ज में डूबे रहते हैं, कर्ज चुकाने में भी ये किस्त जो है बहुत हेल्प करती है।
And the PM Kisan scheme is a central sector scheme to provide income support, like we mentioned earlier, to small and marginal farmers that provides financial support of 6,000 rupees per year to eligible families in three equal installments. And how to register for this scheme, that is the Kisan Samman Nidhi. Farmers have to approach the local revenue officer, Patwari, or nodal officer nominated by the state government. The common service centres have also been authorised to do the registration of the farmers for the scheme upon payment of fees. Farmers Corner on the official website of PM Kisan Samman Nidhi Yojana, pmkisan.gov.in, there's a section called the Farmers Corner. And farmers can register themselves through the Farmers Corner on the portal. They can also edit the name in PM Kisan database and know the status of their payments. Documents required to register under the scheme are Aadhaar is mandatory. Apart from Aadhaar, citizenship certificate, land holding papers, and of course bank account details have to be submitted to the concerned authorities.
अनिता की इन बातों को मैं भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं कि क्या कुछ आप कर सकते हैं इस योजना का फायदा उठाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो 6,000 रूपये हैं ये एक मुश्त नहीं आते हैं, 2,000 रूपये की तीन समान किश्तें दी जाती हैं जो किसान के बैंक में डायरेक्ट चली जाती हैं। अब आपका पैसा आपके खाते में आएगा कैसे? आप किसान पोर्टल पर जाकर अपने खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के आने का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको पीएम किसान पोर्टल पे जाना है, आपको लॉगिन करना है pmkisan.gov.in। यहां पर जाएं, किसान कॉर्नर पर क्लिक करें, बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन चुनें, आप किस जिले में हैं, किस राज्य में हैं, किस तहसील में हैं, किस ब्लॉक में हैं, किस गांव में हैं, जो भी जरूरी डिटेल है उसको भरें, गेट रिपोर्ट का बटन क्लिक करें और यहां बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम लिखा दिखाई दे जाएगा। तो इतना आपको करना है और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों ने इसको जान लिया होगा, समझ लिया होगा, और उम्मीद है कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम के आखिर में पहुंचेंगे ना, तब तक आप इस योजना में अपने आप को
रजिस्टर कर चुके होंगे,
जोड़ चुके होंगे, और बस इंतजार कीजिएगा कि किस्त आपके खाते में आ ही रही है। परिक्रमा में अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ उनके है पास। तो आइए सबसे पहले हम आपको कोहिमा लिए चलते हैं।
वे द नागालैंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द निर्भय व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम दैट इज VLTS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट ट्रांसपोर्ट कमिश्नरेट इन कोहिमा। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH इनिशिएटेड द स्कीम एज डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट वाइज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट एज पर द AIS 140 स्पेसिफिकेशन। More from our Kohima correspondent Asunu.
The launch of the Nirbhaya vehicle location tracking system in Nagaland is to ensure safety of women and girl child. It also will cover safety for women, children and vulnerable individuals who often face safety challenges while commuting, especially during late hours or in unfamiliar areas. The vehicle location tracking device will be installed on all public transport registered before or after January 1, 2019. This vehicle will be fitted with a VLT device with a unique ID and a panic button, and the details will be integrated with the Vahan database. The vehicle location tracking device will be monitored in a command control center manned by personnel 24/7. The center will serve as an interface linking the vehicles, police control room and related enforcement and emergency units into a real-time data sharing network. The project aims in increasing safety and security for women, children and vulnerable individuals during transportation, timely response and assistance in case of emergencies or distress situation, deterrence of potential perpetrators due to the visible presence of tracking system, improved trust and confidence among commuters leading to increased usage of public transport. The project also seeks to make public transport safer and instill confidence among commuters, and with the collaboration between transport authorities, enforcement agencies and quick response team will ensure successful implementation implementation and sustainability of the project. The hardware of the vehicle location tracking device is equipped with real-time reports by time or distance in intervals, high-sensitivity GPS chips, GSM, GPRS, SMS, quad band, voice communications, among others. For Parikrama, Asunyon from Kohima.
देश के पूर्वी हिस्से से अब आपको हम लिए चलते हैं देश के पश्चिमी हिस्से की ओर, वो है राजस्थान का सरहदी जिला जैसलमेर। जानते हैं राजस्थान अक्सर फेमस है, प्रसिद्ध है सिर्फ ऊंट के लिए या फिर वहां के खान पान के लिए, लेकिन राज्य पक्षी है गुंडावड़। इसको लेके एक बहुत ही सुखद खबर सामने आई है। इस पक्षी की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका संरक्षण किया जा रहा है और संरक्षण के प्रयास इतने तेज हैं कि इस पंछी को भी पंख लग चुके हैं। सुनते हैं जितेंद्र द्विवेदी की ये रिपोर्ट।
हाल ही में वाटर होल प्रणाली की गणना में जैसलमेर के सुदासरी व रामदेवरा में 64 गोडावण नजर आए थे। वहीं अब फील्ड में दो नन्हे गोडावण के अलावा 6 अंडे भी नजर आए हैं। इतना ही नहीं, सम बिडिंग सेंटर में 2019 में कलेक्ट किए गए अंडों से निकली मादाएं भी अब प्रजनन करने लगी है। जिले के वन अधिकारियों ने बताया कि यह गोडावण संरक्षण के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है। गौरतलब है कि कुछ वर्षों पहले राजस्थान में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या लुप्त प्राय हो गई थी, जिसके बाद इसके संरक्षण के विशेष अभियान चलाया गया और उसी के परिणाम से अब गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी।
राज्य पक्षी गोडावण की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, अभी हमने सुना। क्या आप जानते हैं कि यह पक्षी कैसा दिखता है? नहीं ना, तो गूगल पर सर्च कीजिए और देखिएगा कि कितना खूबसूरत यह पक्षी और क्यों उसको संरक्षित किया जा रहा है। और अब बात गर्मी की। सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले जब अखबार को देखते हैं, सुनते हैं या खबरें सुनते हैं, तो पिछले 15-20 दिन से हम यही सुनने में आ रहे हैं आज का टेम्परेचर क्या रहेगा,
है ना। जनरली फॉर दैट्स द फर्स्ट थिंग वी एंगल फॉर, कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होने वाला है। एक्चुअली वी रीच सो मेनी लिमिट्स दैट नाउ ऐसा लगता है अच्छा 44 है, चलो
आज का टारगेट क्या है। बहरहाल दिल्ली में गर्मी का जो कहर वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये ऑरेंज अलर्ट फिर अपना कलर बदलेगा और अगले 4 दिन में ये येलो अलर्ट हो जारी कर दिया जाएगा और इस दौरान दिल्ली का जो तापमान है वो 45 यानी 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। तो इतना कीजिएगा, गर्मी से बचने के लिए जितना कम से कम हो बाहर निकलिएगा और जैसा मौसम विभाग कह रहा है दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे का जो वक्त होता है उसमें हीट वेव यानी लू जो होती है, गर्म हवाएं जो होती हैं बहुत तेज चलती हैं, तो कम से कम निकलने की कोशिश कीजिएगा। और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो अपने चेहरों को ढक के रखिएगा, पानी अपने पास रखिएगा, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पानी, है ना। जल ही जीवन है, अब समझ में आता है। और मौसम विभाग के माने तो दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी का ये दौर इस पूरे हफ्ते रहने की संभावना है।
एंड नवीन, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज आल्सो इश्यूड रेड वार्निंग ओवर पार्ट्स ऑफ गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टुडे ड्यू टू हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम अवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The IMD has credited this weather disturbance due to a cyclonic circulation over the Marathwada region in lower tropospheric levels. It added that light to moderate rainfall with thunderstorm, lightning and gusty winds will descend over Karnataka, Kerala, Lakshadweep and Andhra Pradesh during the next 3 to 4 days. These conditions will remain over northeast India and West Bengal during the next 6 days. In east and central India, similar conditions will exist over Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh during the next 4 days. Meanwhile, heat wave conditions will continue to prevail over parts of Punjab, Haryana, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh till the 13th of this month. Maximum temperatures are expected to rise by 2 to 3 degrees Celsius over northwest and central India during the next 4 days. Adarsh for Akashvani News, Delhi.
अनिता, हमारा देश इतना खूबसूरत है कि आपको एक ही समय में, एक ही दिन में सारी ऋतुएं देखने को मिल जाती हैं, है ना। हम बात दिल्ली में गर्मी की कर रहे थे, वहीं गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो अगर आपको एक ही दिन में सारे मौसम देखने ना, तो भ्रमण कीजिएगा हमारे देश का। अगर आपके पास वक्त है और पैसा है तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और हाँ, और गर्मी का स्वाद चखना है तो दिल्ली में रहिएगा, है ना।
बिल्कुल।
चलिए अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, वहां से इंतजार कर रहे हैं देवमणि। गुजरात के केवड़िया में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन गुजरात की भीषण गर्मी के बावजूद गर्मी की छुट्टियों के दौरान पिछले एक महीने में कितने लाख पर्यटक आ चुके हैं अनिता, जानते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक इस भयंकर गर्मी में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा कर चुके हैं। तो सीधे अपने संवाददाता देवबणी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि भरत देवबणी के पास क्या कुछ है इसके बारे में और बताने के लिए।
इस गर्मी की छुट्टियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल बन गया है। इस एक महीने में यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक आए हैं, जो पिछले साल से 1,75,000 ज्यादा है। हमारे नर्मदा जिले के प्रतिनिधि दीपक जगताप ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवकाश के दौरान विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वहीं अवकाश के आखिरी शनि और रवि में सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए हजारों पर्यटक आ रहे हैं।
एकता नगर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, अब दुनिया भर में पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। खास करके छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है, क्योंकि इस बार समर वेकेशन की छुट्टी और गर्मी का मौसम है। तापमान 40 से 42 डिग्री के ऊपर है, फिर भी पर्यटकों की पहली पसंद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गई है। इस गर्मियों की छुट्टी में पर्यटकों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक लोगों का पसंदीदा पर्यटन बन गया है। इस छुट्टियों में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। छुट्टियों में आखिर शनिवार हो या रविवार की छुट्टियों, हजारों की संख्या में पर्यटक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को आ रहे हैं। और 2018 से अब तक देखने जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 3 करोड़ से ज्यादा अधिक पर्यटक आज तक मुलाकात ले चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। वही पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने करीबन 2.5 लाख पर्यटक यहाँ आ चुके हैं। इस बार रिकॉर्ड की संख्या में पर्यटक आए हैं। तापमान 41 से 45 डिग्री होने के बावजूद भी अधिकारियों ने सभी स्थानों पर केनीपी सी व्यवस्था की है, लेकर पीने के पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है।
गुड़गांव के एक पर्यटक ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माहौल और प्रतिमा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।
एक बार जब गुजरात से आने का सोचे थे तो लगा कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर कोई और ज्यादा तो नहीं होगा। 7-8 दिन का टूर था, सोमनाथ कवर किया हमने, द्वारिका कवर किया, और उसके बाद एक ये भी था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहले था लोगों को कि वहाँ पे तो खाली एक स्टैच्यू होगा, लेकिन जब यहाँ आके हम देख रहे हैं ये खाली स्टैच्यू नहीं है, ये पूरा एक एम्बियंस है। आप पूरे आप फील करेंगे ना जब इसको, तो वो बहुत बड़ी चीज आपको लगेगी। यानी कि आप ये देखिए, जैसे कैनोपी लगा रखी है यहाँ पे, और मौसम अभी तो वैसे ही बहुत अच्छा है। साइड में आप नर्मदा देख सकते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है हर तरह की, और अंदर क्लीनिनेस इतनी ज्यादा अच्छे से रखते हैं यहाँ पे। और ये जो स्टैच्यू है भाई, आपको अगर बच्चों को अपने थोड़ा कल्चर के बारे में बताना है तो डेफिनेटली लेके आना चाहिए।
जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि देश विदेश में रहने वाले भारतीयों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस भव्य प्रतिमा से काफी लगाव है। परिक्रमा के लिए नर्मदा से दीपक जगताप के साथ भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember social reformer Ramanath Tagore, who died on the 10th of June, 1873. In his younger age, he was attracted towards the ideas of Raja Ram Mohan Roy and was one of the original trustees of the Brahma Samaj.
A leading social figure in 19th century Kolkata, Ramanath Tagore was born on the 26th of October, 1801. He was the younger brother of Dwarkanath Tagore. He helped form the Brahma Samaj. He also initiated the establishment of the British Indian Association and was its president from 1867 to 1877. The Indian Association played a catalytic role in building up political consciousness.
In association with Prasanna Kumar Tagore, Ramanath Tagore started the paper Indian Reformer. He contributed extensively to the Harkara, an Englishman, under the pseudonym Hindu.
As a member of the Bengal Legislative Council, Ramanath Tagore advocated the rights of the tenants and was named the Rayat's Friend. He was nominated to the Viceroy's Council in 1873 and was made a Maharaja by Viceroy Lytton. Ramanath Tagore continued to work for the people till his death. We salute the great Indian.
We also remember Gandhian freedom fighter Ponaga Kanakamma, who was born on the 10th of June 1892 in Nellore district, Andhra Pradesh. She participated in the non-cooperation movement and salt satyagraha and is credited for founding Shri Kasturi Devi Vidyalayam, a large school for girls in her home district.
Though Ponaga Kanakamma had no formal schooling, she acquired proficiency in Telugu, Hindi and Sanskrit by her own efforts. In 1913, she started Sujana Ranjini Samajam in Potlapudi village near Nellore to serve the society. She worked for the upliftment of depressed classes. For a brief period, she was under the spell of revolutionary politics and hosted Bipin Chandra Pal during his visit to Nellore in 1907.
Kanakamma later became an ardent disciple of Mahatma Gandhi. She donated 13 acres of land to establish the Pinakini Satyagraha Ashram near Nellore, which was inaugurated by Gandhiji on the 7th of April 1921. For participating in the non-cooperation movement and salt satyagraha, Kanakamma underwent 1.5 years of rigorous imprisonment. Ponaga Kanakamma hosted many eminent freedom fighters and poets at her residence in Potlapudi.
In 1923, Kanakamma founded Shri Kasturi Devi Vidyalayam as a part of Gandhiji's constructive program, and Gandhiji laid the foundation stone for the permanent building in 1929. This sprawling Kasturi Devi Vidyalayam campus, extended to about 23 acres, is a living monument for Kanakamma.
Kanakamma continued to work for the betterment of people till her death in 1963.
We also remember freedom fighter Makka Passi, who took part in the First War of Independence in 1857. Makka was a high military official in the Nawab of Awadh's army. He organized 200 soldiers and led them to fight against a British battalion passing through Barabanki from Awadh.
Makka Passi, along with his comrades, halted the British battalion on its way near village Chinhat on the 10th of June 1857 and fought bravely. After a fierce fight, Makka Passi was shot dead by the British.
परिक्रमा में यह था आजादी का सफर और अब पन्ना पलटते हैं तो जगत पे खबर पड़ती है। जगत है आर्थिक जगत, जानते हैं कि क्या कुछ रहा आज दिन भर में। अनीता के साथ।
The Indian stock market, the Sensex and the Nifty snapped their 3-day winning run after opening higher. Both the Sensex and the Nifty 50 hit their fresh record highs in intraday trade but eventually ended up lower on profit booking, tracking weak global cues. The 30-share BSE Sensex opened at 76,935 against its previous close of 76,693 and hit its fresh record high of 77.79 during the session. The index finally closed with a loss of 203 points or 0.27% at 76,490. The Nifty 50 opened at 23,319 against its previous close of 23,290 and hit its fresh all-time high of 23,411. The index closed 31 points or 0.13% lower at 23,259. And now for what's happening in the sports arena, over to Naveen.
खेलों की दुनिया में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इससे पहले कल रात स्कॉटलैंड ने ओमान को पराजित किया, भारत ने पाकिस्तान को हराया। और अगर टेनिस की बात करें तो भारत के सुमित नांगल ने हेलीब्रॉन नेक्रा कप चैलेंजर ट्रॉफी जीत ली है। ये मुकाबला हुआ था जर्मनी में, और उससे भी पहले अगर बात करें तो टेनिस में ही स्पेन के कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, और उन्होंने अलेक्जेंडर ज़वरेव को 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 और 6-2 से पराजित किया। तो ये बातें खेलों की दुनिया की, और अब याद करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तियों को जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं आज के दिन से, तो क्यों ना सबसे पहले उसे याद किया जाए जो जुड़ा है खेलों की दुनिया से।
जी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रकाश पादुकोण, हुज बर्थडे इज टुडे, बोर्न इन 1955, द इंडियन फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर। He was ranked world number one in 1980, the same year he became the first Indian to win the All England Open Badminton Championships. He was awarded the Arjun Award in 1972 and the Padma Shri in 1982 by the Government of India. He is one of the co-founders of Olympic Gold Quest, a foundation dedicated to the promotion of Olympic sports in India. Prakash was initiated into the game by his father, Ramesh Padukone, who was the secretary of Mysore Badminton Association for many years.
आज हम याद कर रहे हैं जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड को। आज उनकी पुण्यतिथि है। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कई फिल्मों में काम किया, उत्सव, मंथन, इकबाल, डोर। और गिरीश कर्नाड का जो जन्म हुआ था वो 1938 में 19 मई को हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो उन्होंने की थी मंथन, बैकग्राउंड में उसका गाना सुनते, थोड़ा सा और सुना जाते। आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन की भी पुण्यतिथि है। जीवन का जन्म 14 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन आज ही के दिन वो इस नश्वर दुनिया को छोड़कर चले गए थे। पूरा नाम ओंकार नाथ धर था। फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बहुत संजीदगी से निभाते थे। दरअसल हम उनको विलेन के रूप में देखते थे, नारद के रूप में उन्होंने इतने किरदार निभाए हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। तो उनके कुछ चुने हुए संजीदा और कुछ खलनायक रूपी डायलॉग जो है वो हम चुनके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए सुनते हैं।
छोड़ दे ये तीर कमान, ये राजाओं महाराजाओं के खिलवाड़ हैं। जा 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 जा, घटिया काम कर घटिया।
नहीं नहीं नहीं, जब तक शादी हो जाता हम यहाँ से जाएंगे नहीं।
क्या
और शादाब
सर, पेड्रो का नंबर लग गया।
आप मुझे मौका तो दीजिए बात करने का।
शादाब,
हम आपा क्या क्या बाबा कथा चाहते हैं। शादाब,
देखो भाई, मैं लोगों से ज्यादा बहस नहीं किया करता। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती है, मैंने मशीन इसीलिए लगवाई है।
मैंने सेहत तो बहुत छोटा है, अगर निशाना चूक गया तो शेप बच जाएगा और मेरे सर का ढक्कन खुल के रह जाएगा।
And today is the birth anniversary of Judy Garland, the American actress, singer and dancer. She attained the international stardom and critical acclaim as an actress in both musical and dramatic roles, as a recording artist and on the concert stage. Renowned for her versatility, she received the Golden Globe Award, a special Tony Award, and was one of the 12 in history to receive an Academy Juvenile Award. Garland won the Grammy Award for Album of the Year. In her 1961 live recording, Judy at Carnegie Hall, she was the first woman to win that award. Throughout her career, she recorded and introduced numerous songs, including Over the Rainbow, which became her signature song, the Christmas classic Have Yourself a Merry Little Christmas, and St. Patrick Day's anthem, It's a Great Day for the Irish.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand.
आज बेहतरीन गायक रूप कुमार राठौड़ भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बेहतरीन गायक रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वो गायक से पहले एक दमदार तबला वादक रहे हैं। जाने माने ध्रुपद गायक पंडित चतुर्भुज राठौड़ के बेटे थे और वो आज के दिन अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत से बेहतरीन गाने गाए हैं, लेकिन इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं।
जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ।
इस गीत के साथ हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप सुन सकते हैं लॉग इन करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन और अनीता को दें इजाजत। नमस्कार।